आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में अनुराग अन्वेषी आपका स्वागत करता है। स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इन दिनों सुरक्षा बलों की कार्रवाई से बौखलाए हुए आतंकवादी स्थानीय नेताओं पर लगातार हमले कर रहे हैं। गुरुवार देर रात राजौरी में बीजेपी के मंडल प्रधान के घर पर आतंकियों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। झारखंड के डोरंडा कोषागार से की गई अवैध निकासी मामले की सुनवाई शुरू हो चुकी है। अगर सजा हुई तो लालू प्रसाद यादव को फिर जेल जाना पड़ सकता है। भारत को जल्द ही कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक लाइट मिल सकती है। फिलहाल यह वैक्सीन किस स्टेज पर है यह बताएंगे हम आपको। आज के पॉडकास्ट में इन खबरों के अलावा टोक्यो ओलंपिक से लौटे खिलाड़ियों के सम्मानित किए जाने के सिलसिले पर भी बात होगी। साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की खबरें भी लेकर आए हैं हम आपके लिए। फिलहाल चलें पहली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में सेना और स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई से आतंकी बौखला गए हैं और लगातार स्थानीय नेताओं को अपना निशाना बना रहे हैं। गुरुवार देर रात आतंकियों ने राजौरी में बीजेपी के मंडल प्रधान जसवीर सिंह के घर को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 5 लोग घायल बताए जा रहे हैं। वारदात की जानकारी मिलते ही मौके पर जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बल पहुंच गए हैं और इलाकों को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। आतंकियों के तलाश में पुलिस बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। वहीं हमले में घायल हुए लोगों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बीजेपी के एक नेता और उनकी पत्नी की हत्या कर दी गई थी। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में हुए हमले में बीजेपी नेता और उनकी पत्नी को आतंकवादियों ने गोलियों से छलनी कर दिया था। वारदात के तुरंत बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया जहां दोनों की मौत हो गई थी। इस घटना को आतंकियों ने शहर के लाल चौक पर अंजाम दिया था। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव पर फिर जेल जाने का खतरा मंडरा रहा है। नई मुश्किल चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले के साथ आई है। बता दें कि रांची की सीबीआई कोर्ट ने बचाव पक्ष की वह अर्जी खारिज कर दी है जिसमें कोर्ट के फिजिकल तौर पर खुलने तक मामले की सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया था। कोर्ट ने कहा उनके लिए विशेष तौर पर कोर्ट बैठेगा। कोर्ट ने रोजाना बहस को अभी आदेश दिया है। शुक्रवार यानी आज से कोर्ट में इस पर सुनवाई शुरू होने जा रही है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव सहित 77 आरोपियों ने फिजिकल कोर्ट शुरू होने तक सुनवाई टालने की अर्जी दाखिल की थी। जाहिर है कि कोर्ट मामले के जल्द निपटारे के मूड में है। ऐसे में अगर चारा घोटाला के अन्य मामलों की तरह डोरंडा कोषागार के मामले में भी सजा होती है तो लालू प्रसाद यादव को एक बार फिर जेल जाना पड़ सकता है। टोक्यो ओलंपिक से मेडल जीत कर लौटे खिलाड़ियों को सरकारों की ओर से पुरस्कृत किए जाने का सिलसिला जारी है। इस क्रम में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए बड़े तोहफे का ऐलान किया है। ओलंपिक में पदक जीतने वाले हर खिलाड़ी को यूपी सरकार 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ रुपये तक का नगद इनाम देगी। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि स्वर्ण पदक पाने वालों को 2 करोड़, रजत पदक पाने वालों को 1.5 करोड़ और कांस्य जीतने वाले खिलाड़ियों को सरकार 1 करोड़ रुपये देगी। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि महिला हॉकी टीम के हर सदस्य को 50-50 लाख रुपये दिए जाएंगे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा को 2 करोड़, रजत पदक प्राप्त करने वाले एथलीट को 1.5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक विजेता को 1 करोड़ की राशि देकर सम्मानित किया जाएगा। कोरोना वायरस के खिलाफ भारतीयों को रूसी वैक्सीन स्पुतनिक लाइट भी जल्द मिल सकती है। कहा जा रहा है कि देश में ही तैयार हो रही यह विदेशी वैक्सीन सितंबर तक उपलब्ध हो सकती है। शुरुआती दौर में यह वैक्सीन सीमित संख्या में उपलब्ध होगी जिसकी कीमत 750 रुपये होगी। भारत में अब तक आयात की हुई स्पुतनिक वी का इस्तेमाल हो रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि पेनेशिया बायोटेक ने हाल ही में इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन हासिल करने के लिए डोसियर जमा कर दिया है। कंपनी ने रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड के साथ साझेदारी की है। स्पुतनिक लाइट को रूस की गमालिया इंस्टीट्यूट ने तैयार किया है। इसे रूस में आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मई में मंजूरी मिल गई थी। बीती जुलाई में पेनेशिया बायोटेक ने स्पुतनिक वी वैक्सीन के निर्माण के लिए लाइसेंस हासिल करने की घोषणा की थी। कंपनी इस वैक्सीन को हिमाचल प्रदेश के बद्दी प्लांट में तैयार कर रही है। बद्दी प्लांट में तैयार की हुई वैक्सीन की खेप गुणवत्ता जांच में गमालिया इंस्टीट्यूट और कैसौली स्थित सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी से भी पास हो गई है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। राजस्थान में 1 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोल दिए जाएंगे। हालांकि 1ली से 8वीं तक की कक्षाएं अभी ऑनलाइन चलेंगी। राजस्थान सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। शिक्षण संस्थान में आने से पहले छात्रों को माता पिता की लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा। विद्यालय परिसर में किसी भी विद्यार्थी, शिक्षक अथवा कार्मिक को कोविड पॉजिटिव होने या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर विद्यालय प्रशासन द्वारा संबंधित कक्ष को 10 दिनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। वैक्सीन की दोनों डोज लगवाना अनिवार्य है। स्कूल को क्षमता की 50% उपस्थिति के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल की मॉनिटरिंग जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाएगी। इसी तर्ज पर 1 सितंबर से प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय और कोचिंग संस्थान खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंत्री समूह की सिफारिशें मान ली हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 17 अगस्त से राज्य में स्कूल खोलने का फैसला किया है। बुधवार को सरकार इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी लेकर आई थी, लेकिन कोविड टास्क फोर्स महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है। ऐसे में अब राज्य सरकार स्कूल खोले जाने के अपने फैसले पर फिर से विचार कर रही है। बुधवार को राज्य कैबिनेट में इस मुद्दे पर चर्चा हुई। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि टास्क फोर्स के सदस्यों ने स्कूल खोले जाने के फैसले का विरोध किया है। उनको डर है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को अभी टीका नहीं लगा है, ऐसे में उन्हें खतरा हो सकता है। उनका मानना है कि ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस मामले में राज्य की टास्क फोर्स और स्कूल शिक्षा विभाग के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में ही स्कूलों के संबंध में अंतिम निर्णय किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार कहा गया है कि बुधवार को ऐसी ही एक बैठक हुई थी, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया था। मध्य प्रदेश के लोगों को अब FIR दर्ज कराने के लिए पुलिस थानों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। MP पुलिस ने EFIR सर्विस शुरू कर दी है। भोपाल के थाने में पहले EFIR दर्ज भी हो चुकी है। मध्य प्रदेश के लोग चाहे तो अब mppolice.gov.in या citizen.mppolice.gov.in या फिर मोबाइल ऐप MP eCop पर EFIR दर्ज करा सकते हैं। ट्रायल रन के तहत प्रदेश की सबसे पहली FIR सुमित मंगल ने पिपलानी पुलिस में घर से सोने की चेन चोरी की दर्ज कराई है। पुलिस वेबसाइट पर EFIR सुमित मंगल के दर्ज कराने के बाद पिपलानी पुलिस ने उनसे संपर्क किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 10वीं और 12वीं बोर्ड की परीक्षा के फॉर्म भरने की तारीखों का ऐलान कर दिया है। परीक्षा फॉर्म 16 अगस्त से 15 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। इस बारे में माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जारी निर्देश में बताया गया है कि 10वीं और 12वीं के परीक्षा फॉर्म भरने के लिए स्क्रीन में डिस्प्ले होने वाली जानकारियां, जिनमें छात्र के माता पिता का नाम, जन्म तिथि परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए फॉर्म सावधानी के साथ भरने के लिए कहा गया है। साथ ही 10वीं बोर्ड परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ 8वीं और 9वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी और 12वीं के परीक्षा फॉर्म के साथ 10वीं और 11वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाना जरूरी है। ये खबरें आप न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट hindi.news18.com पर जाएं। न्यूज़ 18 हिंदी के पॉडकास्ट में आज इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।